परमात्मा के अनुग्रह महापुरुषों की मंगलमय प्रेरणा से प्रातःकाल हम लोग विद्यारण्य स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था सकाम जप है और निष्काम जप है। निष्काम जप करने के लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति कामना लेकर के कुछ जप करना चाहता है तो जैसे जैसे विधान किया गया होगा ऐसे उसको करना पड़ेगा, तब जाके कामना जो है सिद्ध होगी। तो उस बात को यहां विद्यारण्य स्वामी जी महाराज उठाए हैं। जैसे कोई बुभुक्षु व्यक्ति है, भोग लग रही है उसको, केवल भोग मिटाना उसका कार्य है, कहीं से भी भोजन मिल जाए तो भूख को मिटाता है। ठीक इसी प्रकार यहां जप आदि से भोजन जो है विलक्षण है इसको बतलाए। नियमेन जपम कुर्याद अकृतो प्रत्यवायतः अन्यथा करणे अनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात्। नियमेन जपम कुर्याद, नियम से व्यक्ति को जप करना चाहिए। अकृतो प्रत्यवायतः, यदि नियम से जप नहीं करता है तो प्रत्यवाय दोष होता है उसको। अन्यथा करणे स्वरवर्ण विपर्ययात अनर्थः, यदि अलग प्रकार से ये न किन प्रकारेण यदि करता है तो करते समय स्वर और वर्ण यदि नष्ट हो जाए, क्योंकि बहुत चीज ऐसा है जैसे हम लोग हिंदी में जिसको कहते हैं ना संस्कृत में भिन्न होता है। राम श्याम तो ये हलंत शब्द होते, राम कहने से हलंत हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में राम श्याम ऐसे होगा। तो इसलिए जब जप करेंगे जैसा मंत्र होगा उस मंत्र के अनुरूप आपको जप करना पड़ेगा, तब जाके वो मंत्र जो है आपको फल देगा। मनना त्रायते इति मंत्र, उसका बार बार दोहराते रहने से, मनन करते रहने से व्यक्ति का कल्याण होता है। और शास्त्र में आया है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, मौने न कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम्। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जो व्यक्ति कुछ उद्योग करेगा परिश्रम करेगा दरिद्रता उससे चली जाती है। जपतो नास्ति पातकम, जो व्यक्ति जप करता रहता है तो उसके अंदर भी पाप प्रवेश नहीं कर पाता है, हर समय शुद्ध करता रहता है अपने आप को। तो जब व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करता है। मौनेन कलहो नास्ति, व्यक्ति यदि मौन रहेगा, आप घर में मौन रहिए, कोई झगड़ा नहीं होगा। और ऐसे जो वर्तमान के चिंतक लोग हैं ना, कहते हैं पति पत्नी में यदि एक भी मौन रहे, पत्नी कुछ बोल रही है तो पति मौन हो जाए, और पति जैसे काली जो है जिह्वा लप लपाती हुई असुरों को मारने लगी, शिव जी आके उनके चरणों में लेट गए, तो जैसे पैर लगा तो काली बिल्कुल शांत हो गए, और वो भी तांडव शुरू कर देंगे तो फिर दोनों के दोनों झगड़ा तो चरम पे चला जाएगा। तो इसलिए मौने न कलहो नास्ति, एक भी व्यक्ति यदि मौन होता है पति पत्नी में से तो उनके घर में कभी भी कलह नहीं होगा, और दोनों यदि शुरू कर देंगे तो फिर घर भी नर्क बन जाता है। तो इसलिए मौन भी बहुत बड़ा साधन है। मौने न कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम्, जो व्यक्ति जगा हुआ है उसको भय नहीं होता है, जगा हुआ व्यक्ति को कभी भी भय नहीं होगा। अभी आप लोग यहां जगे हुए हैं तो जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होगा, और व्यक्ति जैसे रात्रि में सोया हुआ है, सांप वगैरह कुछ ऐसे स्वप्न देखा, तो जब जगता है थोड़ा सा डर तो लगता है उसको, क्या पता सचमुच में कुछ हो भी सकता है। लेकिन जगा हुआ व्यक्ति को भय नहीं रहता है। तो यहां कहने का अभिप्राय, जब आप जप करते हैं तो उसके उदात अनुदात स्वरित स्वर में गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रिय, जो स्वर से गाते हैं, अब जो शुक्ल यजुर्वेद वाले हैं ना, वो ठीक से गा नहीं पाते तो हाथ को हिलाते हैं, स्वर से नहीं बोल पाते। और कृष्ण यजुर्वेदी वाले जो है वो जैसे स्वर होना चाहिए, जहां उदात है अनुदात है स्वरित है, उसके अनुरूप वो लोग बोलते हैं। सामवेद का जहां पाठ किया जाता है तो वहां जैसे स्वर होगा उस स्वर के अनुरूप पहले से शिक्षा लेते हैं वो लोग। तो इसलिए कामना से यदि आप कुछ करते हैं तो ये सब देखना पड़ेगा, वर्ण की हानि न हो, स्वर की हानि न हो, ये इसमें देखना पड़ता है। तो आगे यहां वृत्रासुर के प्रसंग दिए हैं, टीका को पहले देखिए। नियमेन इति तत्र हेतुम आह अकृतो इति, अकृतो प्रत्यवायतः, नियम से यदि आप नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। दोष का अभिप्राय यह है कि आप जो फल प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। जैसे शास्त्र बताया उसमें कोई प्रश्न नहीं होता, क्या क्यों ऐसे करना है, पानी क्यों छिटना है। यहां शास्त्र यदि कहता है वहां केशवाय न गोविंदाय न माधवाय न, तो करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, मैं तो मैं अपने माता पिता के नाम लूंगा उसमें, तो वो नहीं बनेगा। जैसे शास्त्र कहा है ऐसे आपको करना पड़ेगा। भवतु एवं अकरणे प्रत्यवायस्य, यदि नियम से नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। अन्यथा करने तो स नास्ति इति आशंक्य, अन्यथा का मतलब जैसे तैसे आपने कर लिया। जैसे कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो व्यक्ति इतनी जल्दी से माला को घुमाता है तो माला बेचारी भी रोने लग जाती है, पता नहीं क्या मेरी हाल हो गई, सब जल्दबाजी में करना पड़ता है उसमें। तो वहां तो सब वर्ण विपर्य स्वर सब नष्ट हो जाते हैं जल्दबाजी में। तो इसलिए यहां कहते हैं अन्यथा करणे नास्ति, ऐसी बात नहीं है। अन्यथा करणे स्वर वर्ण विपर्यात अनर्थः, सार्थक नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। कैसे उसको आगे बताते हैं, मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। इसमें कहे स्वरतो वर्णतो वा मंत्रहीन, स्वर से अब ठीक स्वर से नहीं बोले, अथवा वर्ण से ही बोलते समय राम की जगह पे आप राम बोले, राम जहां कहना चाहिए राम बोले तो ठीक कहे क्या, और क्या बोल रहे हैं तो सामने वाले को पता नहीं लगेगा। अब कहीं प्रश्न है कि राम के भाई का नाम क्या है, तो किसी ने कहा भरत, दूसरा लिख दिया भारत, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। चाहे एक वर्ण बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, वर्ण की हानि हो गई वहां। जैसे उसमें कहा गया है ऐसे करना पड़ेगा। स्वरतो वर्णतो वा मंत्रहीन, और मिथ्या प्रयोक्त न तम अर्थमाह, मिथ्या यदि आप उच्चारण करेंगे तो उस अर्थ को प्रकट नहीं करता, न तम अर्थमाह। क्या होगा इसी से, यजमानम बाघ वज्रो हिनस्ति, जो यजमान है जो कर रहा है उसका नाश हो जाएगा। किसी दूसरे के लिए कर रहा था स्वयं का नाश हो गया। वाणी, जैसे वाणी से आप जो प्रयोग करते हैं ना, यही बाघ वज्र है। बाघ वज्रो यजमानम हिनस्ति, आप कहना कुछ चाहते थे, उच्चारण कुछ करना चाहते थे किसी और के लिए, और लौट करके आपके पास आ गया, तो बात उल्टी हो गई कि नहीं? जैसे यहां दृष्टांत देते हैं, स्वरतो अपराधात यथेन्द्र शत्रु, उसमें आत्रा है इंद्र शत्रोर वर्धस्व। वृत्रासुर जो था ना, वृत्रासुर को इंद्र ने मारा, हो त्वष्टा एक थे, उनका पुत्र था विश्वरूप। एक बार इंद्र जो है अपने सिंहासन छोड़ करके चले जाते हैं, तो उस समय कोई ना कोई पुरोहित तो होना चाहिए। नहीं नहीं, इंद्र ने बृहस्पति चले जाते हैं, बृहस्पति चले जाते हैं, तो सारे देवता सोचते हैं बिना पुरोहित के ये सब कर्मकांड कैसे चलेगा, क्रिया कैसे होगी, किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। ढूंढते हैं तो देवताओं में कोई नहीं मिलते हैं। तो विश्वरूप थे, विश्वरूप को वहां नियुक्ति किया जाता है, ये तो असुर थे ना, तो देवताओं के साथ साथ अपने असुरों के भी हित करते थे। अब इंद्र देख लिए, देखने से उसको शिरच्छेदन कर देते हैं, वो नष्ट हो जाता है। अब त्वष्टा जो है इंद्र को मारने के लिए अभिचार मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो वहां इंद्र शत्रुर वर्धस्व, इसमें जो है ना स्वर का अपराध हो जाता है। जैसे अंतोदात्त होना चाहिए था, आधी उदात्त हो गया, जो करना चाहिए ना उसमें उच्चारण करते समय। अब उदात अनुदात स्वरित जो वेद पढ़ते हैं उन्हीं लोगों को पता लगता है, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं लगेगा, और जो पुरोहित लोग वही मंत्र उच्चारण करेंगे, आदमी को तो पता नहीं लगेगा क्या बोल रहा है। अब जितने भी पूजा पाठ होता है, पंडित लोग वहां चावल फेंकी, मंत्र क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं लगता है। वहां फूल छोड़िए तो फूल छोड़ देगा, मंत्र के माध्यम से क्या बोल रहा है उसका अर्थ किसी को पता थोड़ी लगता है, नहीं लगता है। तो इसलिए जो पुरोहित लोग थे वो देखें कि भाई ये असुर लोग बढ़ जाएंगे तो संसार की हानि हो जाएगी, तो देवताओं के कल्याण करने के लिए अब इंद्र से शत्रु, और इंद्र शत्रु यस्य, बहुव्रीहि समास, दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, और यदि बहुव्रीहि समास करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। इंद्रस्य शत्रु, मैंने इंद्र को मारने वाला, हाँ मैंने इंद्र को मारने वाला, तो कौन बनेगा? वृत्रासुर। उसको नहीं करके वो लोग क्या किए, बहुब्रीहि समास कर दिए, उसमें बने इंद्र शत्रुर यस्य, इंद्र जिसको मारने वाला है, तो उसकी वृद्धि हो, तो इंद्र की बुद्धि हो गई, तो इंद्र जो उसको मार दिए। तो इसी प्रकार यहां कहते हैं यथा इंद्र शत्रु हो अपराधात स्वरतो यजमानम हिनस्ति, यजमान को ही नाश कर दिया, इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न किया और इंद्र ही उस पुत्र को मार दिया। बिल्कुल बात जो है उल्टी हो गई, इसी चीज को यहां बतलाते हैं। इति उक्तत्वात् इति भावः, तो मंत्र प्रयोग करते समय उसमें ये वर्ण और स्वर को देखना पड़ता है, तो जैसे वहां देखना पड़ता है तत्व निश्चय करने पर करने के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा क्या? अब यहां प्रसंग चल रहा है उसके लिए भी ऐसा नियम देखना पड़ेगा जहां जैसा है। अब जैसे महाभारत युद्ध हो रहा था, अब अर्जुन को भगवान कृष्ण वहां तत्व ज्ञान दिए, तो वहां बोलना चाहिए पहले गंगा स्नान करके आओ, फिर जो है सिद्धासन में बैठो, मेरी तरफ मुख करो, फिर मैं जैसे बोलूंगा ऐसे तुम अनुसरण करो। तो किसी भी समय जो है व्यक्ति पात्रता उसके अंदर होनी चाहिए, और जिससे आप लेना चाहते हैं वो योग्य हो तो किसी भी समय आपको ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान तो सबसे सरल है, ज्ञान जो है सबसे सरल है। वो कहते हैं ना, अपने कैलाश आश्रम के मंडलेश्वर जी थे, वो कहते थे जैसे पद्म की पंखुड़ियां हैं, अब 10 पंखुड़ी को आप एक जगह पे रखें और एक सुई से छेद करेंगे तो कितने टाइम लगेगा, उससे भी और जल्दी में आपको ज्ञान होगा, उससे भी और जल्दी आपको ज्ञान हो सकता है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन इतने पात्रता उसके अंदर होनी चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए, इसलिए इसमें उस चीज को बताने जा रहे हैं। प्रसंग चल रहा था जैसे क्षुधा निवृत्ति, ननु क्षुधाया दृष्ट बाधा हेतुत्वात् तन्निवृत्तये अनियमेनापि भोक्तव्यमेव। क्षुधा कैसा है, दृष्ट हेतु है, भूख आपको लगेगी तो आपके लिए तो अनुभव होता है कि नहीं होता है कि भूख लग रही है, दृष्ट है। ऐसा नहीं कि वो किसी को बताएगा तब तो जाकर के पता लगे, स्वयं को तो सदा पता रहता है, स्वयं संवेद्य है वो। क्षुधाया दृष्ट बाधा हेतुत्वात्, दुख होता है जब भूख लगेगी, कष्ट होगा, तन निवृत्तये, दृष्ट बाधा को निवृत्ति करने के लिए अनियमे नापि भोक्तव्यमेव, बिना नियम से, वहां नियम की आवश्यकता नहीं। अब भूख मिटानी है जैसे तैसे, ऐसा नहीं कि अमुक चीज खाएंगे तब जाकर के भूख मिटेगी, भेलपूरी खाएंगे तब जाके, बड़ा पाव खाएंगे तब जाके भूख, जो भी सामने आ गया व्यक्ति खा करके भूख को निवृत्ति करता है। विपरीत भावनायास्तु, जो शरीर को हम लोग मैं मानते हैं और संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है, तथात्व तो अभावात, और उसमें दुष्ट अभाव के, दुष्ट बाधा के अभाव होने से ऐसा शंका करते हैं, दुष्ट अभाव के अभाव होने से तद निवर्तकम ध्यानम, उसको निवृत्ति करने के लिए ध्यान करना चाहिए, और ध्यान कैसा है, अदृष्ट फलाय नियमेन अनुष्ठेयम इति आशंका अहम्। ध्यान करने से अदृष्ट फल होगा। देखो ध्यान अलग चीज है और निधिध्यासन अलग चीज है, ध्यान करेंगे तो उसमें अदृष्ट फल की प्राप्ति होगी, इसलिए नियम से अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसी शंका होने पर उसके ऊपर कहते हैं, कहते हैं क्षुधे दृष्ट बाधाकृत विपरीता च भावना जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितः क्रमः। कहते हैं विपरीता च भावना क्षुधा इव दृष्ट बाधा कृत नास्त्री नास्ति अत्र अनुष्ठाने क्रमः केनापि उपायेन येया। कहते हैं जो विपरीत भावना है वो कैसा है, जैसे क्षुधा दृष्ट बाधा कृत है, विपरीत भावना भी दृष्ट बाधा कृत है। तो इसलिए अत्र अनुष्ठिते क्रम नास्ति, इसके अनुष्ठान में कोई क्रम नहीं है। विपरीत भावना को आप नाश करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि क्रम से आप सब करेंगे। केनापि उपाय, जिस किसी उपाय से व्यक्ति उसको जीतना चाहिए, तो इसलिए क्रम तो बहुत सारी चीज है, बहुत सारे उपाय हैं, किसी भी उपाय से आप उसको अनुभव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दीर्घ दृश्य का विवेक करता है, कोई पंचकोश के विवेक करता है, कोई पंचभूतों के विवेक करता है, कोई अन्य व्यतिरिक्त विधि से उसको अनुभव करना चाहे। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति जिस विधि से किया तो मैं भी उस विधि से करूंगा, किसी भी विधि से, लेकिन विपरीत भावना को हटानी है। कोई भी विधि आप अपना सकते हैं, उपाय तो बहुत है। जैसे भूख निवारण करने के लिए आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं, भोग निवृत्ति होगी कि नहीं होगी। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मैं बिना चावल से कैसे। हमारे पास एक महात्मा जी थे, जब हम लोग परिक्रमा करते थे ना, कहीं कोई रोटी जब दे देता था तो अब रोटी हम लोग, स्वामी जी रोटी खाने से मुझे ऐसा लगता है मैं नाश्ता कर रहा हूं, मुझे जब तक चावल नहीं मिलेगा तब तक भोजन मेरा सिद्ध नहीं होता है, इसलिए चावल तो कहीं ना कहीं से मांगना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, भूख जो है किसी ना किसी उपाय से आपको मिटानी पड़ेगी। जो भी सामने आ जाए तो उसका सेवन करके व्यक्ति भूख को निवृत्त करता है, उसके लिए कोई क्रम नहीं है। क्षुधा इव इति टीका में विपरीत भावनाया दुख हेतुत्वस्य अनुभव सिद्धत्वाद इति भावः। विपरीत भावना कैसा है? दुख हेतुत्वस्य अनुभव सिद्धत्वाद। अब जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है उसको पता लगता है कि विपरीत भावना जो आ गई है कितने कष्टदायक है, शरीर बंधन है, संसार बंधन है, उसको महसूस होता है। सामान्य व्यक्ति को कहां बंधन महसूस होता है, वो तो सवेरे से उठने से फिर पैसा के इकट्ठा करने में चलता जाता है, दौड़ता रहता है, सवेरे शाम दौड़ता रहता है। बंधन क्या चीज है? किसी भी समय जो है श्वास बंद हो सकती है, और संसार में मैं क्यों आया था, क्या कर रहा हूं, परमात्मा मुझे क्यों भेजे थे, अब आगे चल करके मेरा क्या हाल होगा, मैं कहां जाऊंगा, किस लोक में जाऊंगा, क्या बनना पड़ेगा, उसका चिंतन सब करते हैं क्या? बहुत क्वचित लोग हैं जो उसको विचार करते हैं। अब विचार जब करेंगे तब जाके पता लगेगा। ऋषिकेश में एक स्वामी जी हुए जो परमार्थ निकेतन है ना, उधर परमार्थ निकेतन में वो मंडलेश्वर थे, सुखदेवानंद जी उनका नाम था। तो वो जब बचपन में ऋषिकेश आए तो वहां जो क्या कहते हैं खच्चर, उधर पहाड़ों में खच्चर से सामान ढोते रहते हैं। तो एक खच्चर को बहुत सारे सामान ढो रखा था उसमें खच्चर के ऊपर, वो खच्चर को पिटाई करते करते ले करके जा रहा था, पहाड़ चढ़ना है उसको। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, मुंह में फेन निकल रहा था, और गिर भी बैठ भी जाता था तो फिर डंडा मार के उठाता था, पूंछ को कान को सब खींच रहा था। और सुखदेवानंद जी उसमें कम उम्र के थे, वो आए थे किसी कारण से, अब जब देखे ना उनके, उनको लगा यार इसको इतने कष्ट क्यों ऐसे। तो किसी ने था कोई महात्मा होगा कोई होगा कहा कि पूर्व जन्म में कुछ पाप किया होगा ताकि ऐसे नारकीय शरीर उसको मिला है, जहां रोज सवेरे उठते दुख ही दुख है। अब मालिक जब तक उसको लेकर के नहीं जाएगा तो उसके घर में भोजन भी नहीं बन सकता, लेकिन उसके कारण जो है इसको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इसीलिए उनको लगा कि यार फिर इससे छूटने का उपाय क्या है कि आगे का जीवन जो है संवर जाए। तो क्या है, यही तो भजन करो। फिर घर लौटे नहीं, वो वहीं साधन भजन करके आगे चल करके मंडलेश्वर भी बन गए, आत्मकल्याण किए। तो इस प्रकार सोचने वाले तो बहुत कम होते हैं, विचार करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और व्यक्ति तो सोचता है कि चलो देख ले अगले जन्म में करेंगे, बहुत लोग क्या कहते हैं, इस जन्म में तो थोड़ा बहुत हो गया लेकिन अगले जन्म में जरूर करेंगे। अब अगला जन्म क्या मिलेगा किसको पता है, क्या बन करके आएंगे, कोई ठिकाना है नहीं। तो इसलिए ये तो दृष्ट बाधा है, विपरीत भावना जो है। शरीर देखिए, अभी आपको पता लगे नहीं लगे, बुढ़ापे में सबको पता लगता है। शरीर जो है बहुत दर्द देगा जो बुढ़ापे में। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता दृष्टा च दंतावली, उसमें कहते हैं जो बुढ़ापा आ जाएगा ना, गात्रम संकुचितम, शरीर जो है गल जाएगा। गतिर विकलिता, आपके जो चाल है ना, शराबी के जैसे टढ़े मेढ़े, आप अपने शरीर को भी नहीं उठा सकते, खाट पे पड़े पड़े उसमें ऐसे रहेंगे। सारे दांत जो है हट जाएंगे, आंख को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगी, कान को सुनाई नहीं पड़ता है, और कुछ आपके परिवार वालों को कुछ कहना चाहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। हा कष्ट पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रो अपि अमित्रायते, उसमें जो पुत्र भी होता है ना वो भी शत्रु बन जाता है। शत्रु इसीलिए बनता है, आप कुछ कहना चाहते हैं उसके पास समय ही नहीं है, वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहेगा कि हम लोग अपने काम देखेंगे कि आपके पास बैठे रहेंगे। तो बुढ़ापे में पता लग जाता है कितने दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मात जागृहि जागृहि। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जन्म तो दुख है, अब उसमें जो योगी लोग हैं उनको अनुभव में आता है, हम लोगों को कहां पता लगा कि जन्म दुख था कि क्या था, लेकिन योगी लोग उसको अनुभव करते हैं। जरा दुखम वृद्धावस्था दुख रूप है। जाया जाया शब्द का अर्थ है संसार, जो संसार कर रहे हैं, शादी वादी करना, मकान बनाना, क्या जैसे ओम भोह करने से भूल लोग सृष्टि हो जाती है, परमात्मा जब भू कहेंगे ना, ऐसे कोई व्यक्ति संकल्प करते ही मकान बन जाएगी क्या, कितने परिश्रम करना पड़ेगा तब जाके नौकरी मिलती है, मकान बनेगी, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, जिनके घर में बाल बच्चे नहीं उनको पता है, कितने डॉक्टरों के पास दौड़ते फिरते रहते हैं, बाबाओं के पास दौड़ते फिरते, कुछ तो विभूति दे दीजिए कुछ हो जाएगा, जिसका नहीं है उस व्यक्ति को पता लगता है। लेकिन यहां ये दिखा रहे हैं विपरीत भावना जिसको अनुभव में आ गया, शरीर को जो मैं मान रहे हैं इसके कारण वो आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है, वो इसमें दिखाए हैं उस चीज को दुख हेतु तस्य अनुभव सिद्धत्वात्, ये अनुभव सिद्ध है, दुख रूप है। तो आगे कहते हैं तरही स उपाय प्रदर्शनीय इति आशंक्य पूर्वम एव प्रदर्शित इति आह, कहते हैं उस विपरीत भावना से हटने के लिए स उपाय प्रदर्शनीय, उसका उपाय आप बतलाइए। ऐसे आशंका होने पर वो कहते हैं पूर्वम एव प्रदर्शित, पहले ही आपको बता चुके हैं तत्चिंतनम तत्कथनम तन्यन्यम प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्मुधा, ये आपको पहले से दिखा दिए हैं। उपाय पूर्वमेवोक्तस् तच्चिंता कथनादिकः एतदेक परत्वेपि निर्बन्धो ध्यानवन्नहि। कहते उपाय पूर्वम एव उक्तः, इसके उपाय जो है विपरीत भावना को कैसे निवृत्ति करनी है पहले शास्त्रकार जो है बतला चुके हैं तत्चिंतनम आदि के द्वारा। इसलिए तत्चिंता कथनादिका उसको संक्षेप से बतला दिए कि आत्म विषय कथन करना, प्रबोधन करना, चिंतन करना, वाणी से भी परमात्मा के बारे में बोलना है, मन से भी परमात्मा का चिंतन करना है, कोई मिल भी जाए तो उसके लिए यही प्रबोधन करना है, आत्मा के बारे में ही परस्पर में विचार विमर्श करना है। तो ताकि ऐसे आपकी मानसिक स्थिति बनेगी कि परमात्मा मय बन जाएंगे आप भी उसका चिंतन करते करते। एक परत्वेपि, यही एक परता हो जाएगी, इसी से एक परता हो जाएगी। ध्यानवत न निर्बंध ही, ध्यान के जैसे यहां निर्बंध नहीं है कि इसके बाद ऐसे बैठो, फिर इसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधे करो, फिर आस्ते आस्ते एक बिंदी में अपने मन को ले जाओ, फिर उसका ध्यान करो, ये करो, तो उसमें जैसे क्रम है किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना, आस्ते आस्ते उसमें व्यक्ति मन को स्थिर करता है। इस प्रकार यहां ऐसा नहीं है। देखो ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग में बहुत फर्क है। ज्ञान मार्ग तो आप बैठे बैठे जहां कहीं भी बैठे हैं तो वहां चिंतन किए, उसमें विचार प्रधान है। विचारेण वस्तु सिद्धि ही, शंकराचार्य भगवान कहते हैं विचार करते करते ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। एक आप कहीं से विचार सुने, उस विचार को पुनः मनन किए, और मनन करते करते कभी जो है उस स्थिति में आप लंबे समय तक जब रहते हैं तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहां कहते हैं ध्यान और निधिध्यासन में यही फर्क है। ध्यान के लिए तो बहुत प्रक्रिया है, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, सवेरे उठते ही जब आप टीवी लगाएंगे ना, आजकल सब जगह योग का चलता है, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, प्राणायाम से शुरू करेंगे, फिर आसन करेंगे। अब इसको सिद्ध करने में ही बहुत समय हो जाता है, आसन प्राणायाम को ठीक करते करते। यम नियम को कोई नहीं करेंगे, जो उसके शुरू के स्टेप है यम नियम को कोई नहीं करेंगे। सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, अस्तिया का पालन करना है, अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य, इसका कोई नहीं करेंगे। बस सीधा हाथ पैर मोड़ दिए, क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं हम लोग, अभी योगा चल रहा है, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पहले स्टेप को ही व्यक्ति छोड़ दिया। मन तो शांत इसी से होगा, यम से। नियम कभी छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन यम कभी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति यम को ही छोड़ देता है। तो इसलिए उसके लिए तो क्रम है, समय लगता है। तत्व ज्ञान में समय नहीं लगता है, व्यक्ति को तत्व ज्ञान होने में समय नहीं लगता है, ज्ञान तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति जब नहीं हो पाता है फिर मनन निधिध्यासन करता है, और निधिध्यासन करने के बाद भी जो सुने थे ना वही तो होगा आपको। तो इसलिए यहां उसका ध्यान को निधिध्यासन से अलग बताए हैं। उपाय इति ननु जपवत प्रांग मुखत्वादि नियमों माभूत, जैसे आप जप कर रहे हैं तो कहेंगे पूर्व दिशा की तरफ मुख करिए, अब माला जो है कंठ में रखिए, नाभि के नीचे माला नहीं जानी चाहिए, मैंने अनेक नियम है उसी में। अब उस नियम से जप करेंगे तो आस्ते आस्ते मन स्थिर होता है। अब यहां जहां आत्मज्ञान की बात है तो आप उधर भी देख रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, तो आपको ज्ञान हो जाएगा, कहीं भी आप देख रहे हैं। यदि आपके कान गुरु की वाणी पे है, शास्त्र पे है, तो सुनते ही आपको ज्ञान हो जाए, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर देखने कोई मतलब नहीं है। आप चेयर में बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं कि कैसे बैठे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान करेंगे तो चेयर में बैठने से नहीं होगा। उसमें कहते हैं आसीन संभवात, आपको आसन में बैठना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होनी चाहिए, आप निश्चल बैठना चाहिए, उसमें सारे क्रम है, नियम वगैरह है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। ननु जपवत प्रांग मुखत्वादि नियमो माभूत, उस प्रकार यहां नियम नहीं है। ध्यानवत एतदेक परत्व लक्षण एकाग्रता निर्बंधो अस्तित्व आशंक आह एतत्। ध्यानवत, ध्यान के जैसे, अब ध्यान करेंगे ना किसी बिंदी पे, ओम पे, स्वस्तिक पे, किसी मूर्ति पे, अब उसमें अपने मन को टिकाना पड़ेगा ना कोई आलंबन उसमें चाहिए। उस आलंबन में मन को टिकाने के लिए तब जाकर के इसमें कहते हैं कि एतत् एक परत्व लक्षण एकाग्रता निर्बंधो अस्ति। इसी में तो निर्बंध है जहां ध्यान में है, कि उसका ऐसा ध्यान करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन ज्ञान में, निधिध्यासन में ऐसा नहीं है। निश्चय, निधिध्यासन शब्द का अर्थ है बुद्धि से निश्चय करना, और ध्यान जो है मन के तल पर होता है, और निश्चय बुद्धि के तल पर होगा। इसलिए गुरु की बातों पे श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना, उनकी बातों पे यदि श्रद्धा होगी तो मन उसमें टिक जाएगा। अब यदि श्रद्धा नहीं है, कितने भी अच्छी बात कोई बता रहा है तो मन उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। आगे उसी चीज को और थोड़ा विशद रूप से वर्णन करते हैं। ननु ध्यानस्य ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वा तत्र को निर्बंध इति आशंक्य ध्याने निर्बंधम दर्शयितुम ध्यान स्वरूपम तावदः। कहते हैं, शंका करते हैं, ध्यानस्य ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वात्, ध्यान जब आप करेंगे तो जो आपके ध्येय है, ध्यान का जो विषय है उसका विचार करेंगे। ध्येय है, ध्येय है, ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वात्, तो ध्येय के व्यक्ति विचार करते हैं। तत्र को निर्बंध इति आशंका, उसमें कोई क्या निर्बंध है, कोई बंधन उसमें नहीं है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं ध्यान में निर्बंध है। ऐसी बात नहीं कि वहां निर्बंध नहीं है, कैसे है, उसका ध्यान स्वरूपम तावद आह। मृत्ति प्रत्यय सांतत्य मन्यानंतरितं धियः, ध्यानं तत्राति निर्बंधो मनसश्चञ्चलात्मनः। इसमें बतलाए हैं मूर्ति प्रत्यय सांतत्यम। मूर्ति शब्द का अर्थ इसमें टीका में दिए हैं, मूर्ति पदम सगुण स्वरूपम, राम है, कृष्ण है, शिव है, किसी न किसी गणपति है, सगुण मूर्ति के आप ध्यान करते हैं, उनके चरण कैसे दिखाई पड़ रहा है, कैसे पहनावा है, हाथ में क्या धारण किए हैं, गले में कौन सी माला है, उनकी मुखाकृति कैसी है, इस प्रकार मूर्ति में जैसे है आपका जो भी इष्ट है। मूर्ति प्रत्यय सांतत्यम, निरंतर उस मूर्ति के प्रवाह जो है मन के तल पर चलना चाहिए, और बीच में कोई दूसरा अन्य अंतरितम धियः, धियः अन्य न अंतरितम, बीच में कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आना चाहिए, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं ना, केवल उसी का चलना चाहिए। अब आप विष्णु भगवान के ध्यान कर रहे थे, उसमें लक्ष्मी आ गई बीच में, तो आपके ध्यान खंडित हो गया। जिसके आप ध्यान कर रहे हैं केवल उस प्रकार के विचार प्रवाह उसमें चलना चाहिए, बीच बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। अखंड धारा की तरह उसमें आपके विचार जो है चले। तैलवत अखंड प्रवाह, निरवच्छिन्न रूप से खंडित नहीं होना चाहिए। अवच्छिन्न हो गया तो खंडित हो गया, तो निरवच्छिन्न रूप से आपके जो चिंतन का प्रवाह चले। तो इस प्रकार यहां कहे ध्यानम तत्र निर्बंधो, ध्यान में उसमें निर्बंध है। क्यों? मनसस चंचलात्मनः, मन हर समय चंचल है, इसलिए उस मन को बांधने के लिए, मन को बांधने के लिए नहीं नहीं ऐसा बैठिए, ऐसे इस दिशा में रहिए, मन को पहले बंधन में डालना पड़ता है। जब आप ध्यान करने जाएंगे तो प्रातःकाल स्नान कर लीजिए, स्नान नहीं करते हैं तो कम से कम पेट को तो खाली कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, पूर्व दिशा करके बैठिए, फिर जो आपके इष्ट है उसको सामने मूर्ति को रखिए, अथवा मूर्ति नहीं है तो मन में मूर्ति को बैठाइए। कुछ लोग हृदय में, कोई आज्ञा चक्र में, अलग अलग चक्रों में ध्यान करते हैं, तो उसमें मन को बांधने के लिए सब किया जाता है, मन को बांधा जाता है उसमें, तो उसके लिए तो निर्बंध है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई निर्बंध नहीं है, ये सिद्ध करेंगे आगे। इसके टीका में देखिए, मूर्ति थी, धियो शब्द का अर्थ है बुद्धे है, संबंधिनाम देवतादि मूर्ति गोचराणाम प्रत्ययानाम यथ सांतत्यम अवच्छिन्नतया वर्तमानत्वम तद अन्य अन्यान अंतरितम अन्येन विजातीय प्रत्ययेन अव्यभितम सत ध्यानम इति उच्यते। ध्यान किसको कहते हैं, इसको टीका में स्पष्ट, देवतादि मूर्ति गोचराणाम, देवतादियों के मूर्तियों का जो विषय है कैसा है, प्रत्ययानाम, अभी मूर्ति तो बाहर है लेकिन मन में उनके प्रत्यय चल रहे हैं। यद सांतत्यम निरंतर अविच्छिन्नतया वर्तमानम तत, बीच में विच्छिन्न नहीं होता है, खंडित नहीं होता है, अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। अन्यान अंतरितम अन्येन विजातीय प्रत्ययेन अव्यवहितम, अन्यान अंतरितम शब्द का अर्थ किए अन्येन विजातीय प्रत्ययेन, जो सजातीय प्रत्यय आपका चल रहा है, और विष्णु ध्यान कर रहे हैं तो केवल विष्णु ही आपके दृष्टि में है, उसमें कोई दूसरे बीच में राम कृष्ण कोई नहीं आएंगे, आप कहेंगे नहीं वो भी तो भगवान है। आप मन को टिकाना चाहते हैं तो जो आपके इष्ट है केवल उन्हीं का चिंतन करिए, दूसरी यदि चीज उसमें आ गई, दूसरे भगवान यदि वहां, भगवान तो एक है, एक होने पर भी जो आपके इष्ट है उसका चिंतन करना है, तब जाकर के मन स्थिर होगा। इसलिए विजातीय प्रत्ययेन अव्यवहितम सत, विजातीय प्रत्यय उसमें नहीं आना चाहिए, तब जाकर के ध्यानम इति उच्यते, उसको ध्यान शब्द से कहा जाता है। तो जो साधक है अपने मन को ध्येयकार वृत्ति में स्थित करता है, जो आपके ध्येय है उसी में मन टिक जाता है। एवं ध्यान स्वरूपम निरूप्य, इस प्रकार ध्यान स्वरूप का निरूपण करके तत्र निर्बंधम दर्शयती, उसका निर्बंध मतलब बंधन कैसा है उसको दिखाते हैं। तत्र इति तत्र अति निर्बंधो मनसः चंचलात्मनः ध्यानम, मन बहुत चंचल है, सदा पर्यटनशीलस्य, मन कभी शांत रहता है क्या, घूमता रहता है, पर्यटनशीलस्य, जैसे करी तुरगादेर, करी कहते हैं हाथी, तुरग कहते हैं घोड़ा को, ये भी घूमते फिरते रहते हैं। एकत्र स्तंभादो बंधने, किसी खूंट पे खंभे पे आप उसको बांधते हैं, यथा उपरोधो भवति तद्वद इति भावः, जैसे वो बांधने के बाद बंधन में पड़ जाता है, फिर दौड़ेगा क्या? आप पैर बांध लिए तो एक दो बार आगे पीछे होकर के देखेगा, या तो कहेगा बंधन में पड़ गया हूं, फिर शांति से उसमें। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, ऐसे ऐसे आप चिंतन करेंगे। नहीं, पहले चरण का चिंतन करिए, फिर उनके कटी कैसे हैं, क्या हार पहन रखे हैं, उनमें कौन सा वस्त्र सुशोभित है, उनकी मुखाकृति कैसी है, जैसे जैसे उसमें बतलाया गया है, ऐसे आप ध्यान करते 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 जो भी आपके इष्ट होंगे उस रूप में मन जो है स्थिर होता है, तो उसको ध्यान कहते हैं। तो इस प्रकार यहां ध्यान में बंधन है ये दिखाए, मन को बांधने के लिए ये प्रक्रिया बनानी पड़ेगी आपको। मनसश्च चांचल्यादो गीता वाक्यम प्रमाण है, मन कितने चंचल है गीता की बात को भगवान यहां उठाते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे कि मन को स्थिर करो, तो अर्जुन कहे आप हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हे कृष्ण चंचलम ही मना, मन तो हर समय दौड़ता फिरता रहता है। और दूसरी बात है कि वो प्रमाथी है, प्रमथनशील है, व्यक्ति को मथ लेता है। जैसे व्यक्ति दही को मथता है ना, कभी बाएं साइड का ही राइट साइड, आगे पीछे जैसे। अभी आपको किसी चीज की प्राप्ति करनी है और पिताजी के पास गए कि मुझे ये चीज चाहिए, अब पिताजी बोलेंगे अरे थोड़ा सा सब्र, सब्र क्या चीज है, मुझे अभी चाहिए, थोड़ा सा तो कम से कम मन को शांत रखो। अब कमरे में आएंगे, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी चल रहे हैं, मन को जो है बिल्कुल मथन कर देता है। एक संकल्प जो है व्यक्ति को हिला डालता है, शांति से उसको बैठने नहीं देगा, चलने नहीं। जब देखो वही चिंतन चलता है, हमारे पिताजी क्यों मना किए, माताजी को इसमें बीच में रोड़ा बनने की किसने कहा। तो इस प्रकार चिंतन करेगा, मन जो है प्रमथनशील वाला है, व्यक्ति को मत लेता है साधक को। दूसरी बात कहें बलवत, उसमें बहुत बल है, दृढ़ है, ठोस है। तो इसलिए भगवान को अर्जुन कहते हैं तस्या अहम निग्रहम वायु रिव दुष्करम मन्ये, उस मन को स्थिर करना। जैसे कोई वायु को, वायु भी तो नित्य निरंतर जो है चलती रहती है, वायु यदि स्थिर हो जाए तो सब स्थित आराम हो जाएंगे। श्वास प्रश्वास जो चल रही है वो यदि स्थिर हो जाए, सदा वायु जो है चलने वाली है। ठीक इसी प्रकार मन भी ऐसा है, वायु को पकड़ना जैसे कठिन है, मन को भी स्थिर करना ऐसे ही कठिन है। टीका में देखिए चंचलम ही थी प्रमाथी प्रमथनशीलम पुरुषस्य व्याकुलत्व कारणम बलवत समर्थम समर्थ मन निग्रहम इत्यर्थः। प्रमथनशील उसको मथन कर लेता है, मैंने संकल्प, कभी कभी कुछ संकल्प ऐसे मन में आते हैं परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं, तो व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं और आपको हस्तगत नहीं होता है, नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय व्यक्ति की जो स्थिति है ना उसी से पता लगेगा। प्रमथनशीलम पुरुषस्य व्याकुलत्व कारणम, वो व्याकुल हो जाता है। बलवत समर्थ मन निग्रहम इत्यर्थः, मन का निग्रह करना बहुत बलवान है, कर ही नहीं सकता व्यक्ति, मन कठिन है। आगे भगवान उसका समाधान दिए, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको कर सकते हैं, लेकिन जो अभी प्रयास नहीं कर रहा है, मन में कितने बल है कोई बता नहीं सकता। दृढ़म सती असति व विषय लग्नम, विषय रहने पर भी नहीं रहने पर भी उसके साथ संलग्न हो जाते हैं। कभी सामने विषय है तो मन विषय का चिंतन करता है, अब विषय नहीं भी होगा ना तभी भी व्यक्ति घर में बैठे बैठे चिंतन करता है, घर में बैठे बैठे चिंतन करता है। वो आता है ना दुष्यंत और शकुंतला के चरित्र, तो दुष्यंत के प्रेम में शकुंतला पड़ जाती है और दुष्यंत कहती है मैं तुमको रानी बना करके रखूंगा, लेकिन अभी कुछ राज कार्य है, मैं थोड़ा व्यस्त हूं और बाद में फिर आकर के लेकर के जाऊंगा। और दुष्यंत तो चले जाते हैं, अब शकुंतला बैठ करके दुष्यंत के बारे में चिंतन करती रहती है, अब उठते बैठते स्नान करते हर समय दुष्यंत के, इतने में दुर्वासा महर्षि पहुंचते और देखते हैं मैं भी आया हूं और ये अभी मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं कर रही है, तो वहां अभी सब फिर देते हैं। तो यहां कहने का मतलब विषय नहीं है, वहां दुष्यंत नहीं है, नहीं होने पर भी उनका चिंतन चल रहा है, यही दृढ़ है। दृढ़ शब्द है दृढ़म सती असती व विषय लग्नम, विषय के पास रहने पर भी नहीं रहने पर भी उसके साथ संलग्न हो जाता है। तत उद्धर तुम अशक्यम इत्यर्थ, उसे अपने आप को हटाना अशक्य है, असंभव है। अतः तस्य मनसो निग्रहो वायुर निग्रह इव सुदुष्कर, वायु को जिस प्रकार निग्रह करना बहुत कठिन है, ठीक इसी प्रकार मन निग्रह भी बहुत कठिन है। मनसो दुर्निग्रहते वासिष्ठ वाक्यम अपि प्रमाणयति। वशिष्ठ जी राम जी को ये बात बतलाए थे कि मन ऐसे दुष्कर है, उसको निग्रह करना। अप्यब्धिपानान महतः सुमेरुन्मूलनादपि अपि वन्यसनात् साधो विषमश्चित्त निग्रहः। इसमें बताते हैं महतः अप्यब्धि पानात्, समुद्र को आप पान कर सकते हैं, ये संभव है, कोई व्यक्ति चाहे तो समुद्र का प्राशन कर पान कर सकता है, पी जा सकता है। सुमेरुन उन्मलान अपि, और सुमेरु पर्वत को जैसे व्यक्ति उखाड़ सकता है, ऐसे उसको उखाड़ करके घुमा रहा है चारों तरफ सुमेरु पर्वत को। अपि वन्य सनात, अग्नि का भी सेवन कर सकता है, लेकिन चित्त निग्रह विषम, चित्त का निग्रह करना बहुत कठिन है, तो इसीलिए मन को निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान करना कठिन नहीं है, सरल है। कैसे सरल है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।